हरे कृष्णा। गुरुगांव भक्त वृंद, आपके श्रीमद् भागवत के सप्ताह में रविवार के दिन जो सत्संग है उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के दूसरा अध्याय जिसका नाम है डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। तो डिविनिटी क्या है? असल में डिविनिटी है भक्ति। क्यों है डिविनिटी भक्ति? भक्ति इसलिए डिविनिटी है कि तीनों गुणों से परे है। भक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, इसलिए इसको कहा है दैवी प्रकृति। ये दैवी महात्मा नस्तुमाम पारत देवीम प्रकृति में आश्रिता, महात्मा देवी प्रकृति के शरण में है, इसलिए इसको डिविनिटी कहा गया है। इसमें भक्ति है और डिवाइन सर्विस, और वो भक्ति जो है वो प्रेम पूर्वक सेवा करने से की जाती है। तो ये भक्ति कैसे की जाए? असल में ये श्रृंखला पूरी 6 श्लोक से शुरू होगी 20 तक, लेकिन हम यहाँ 15-16 श्लोक से शुरू कर रहे हैं। इस भागवत धर्म इसको प्रभुपाद जी ने एक बार इस धारावाहिक कुछ सत्संग न्यू वृंदावन में किए थे, इस विषय के ऊपर धारावाहिक प्रभुपाद जी के सत्संग न्यू वृंदावन में थे, तब इसका नाम भागवत धर्म दिया गया था। तो श्रीमद् भागवत में भागवत धर्म, एक तो जब प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कहते हैं कि धर्मान भागवतान इय, आपको बचपन से ही कुमारम आचरित धर्मान भागवतान इय, कुमार अवस्था से ही आप भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, तब कहते हैं भागवत धर्म वो है जो भगवान देता है, जिसके लिए छठे स्कंद में भागवत धर्म के लिए धर्मराज कहते हैं धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म, वो है जो भगवान देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने आके भगवत गीता भागवत धर्म की दिया है, ये भागवत धर्म है जो भगवान के अपने मुख से दिया गया है। और विशेष रूप से 4 अध्याय 11वें स्कंद में है, उनका नाम ही भागवत धर्म है, जो वसुदेव भगवान के पिता को देवऋषि नारद निमि महाराज के यज्ञ में नव योगेंद्र ने जो भागवत धर्म का उपदेश दिया है उसका वर्णन कर रहे हैं। वहाँ कहते हैं भागवत धर्म वो है जो भगवान ने दिया है, और उसको पालन करने का अधिकार सबको है। तो अब जब धर्म भगवान ने दिया है तो उस धर्म में हमारी रुचि हो तब वो धर्म शुरू हो। मद कथासु रुचि, भगवान कहते मेरी कथा में जिसकी रुचि हो तब ये भागवत धर्म शुरू होता है। तो भगवान का नाम वासुदेव है, तो वासुदेव कथा में रुचि कैसे हो? उसके लिए पहली चीज हरि कथा में, गीता में, भागवत में रुचि हो, उसके लिए क्या चाहिए? ये 15 श्लोक हम पढ़ते हैं। आप लोग भागवत अगर है तो खोलिए 1 स्कंद 2 अध्याय 15 श्लोक। यद अनोध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबद्धनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य कोन कुर्याद कथारतिम। कोविदा का मतलब है बुद्धिमान। बुद्धिमान वैसा बुद्धिमान कौन नहीं है? न कुर्यात कथारतिम, जो कथा में रति नहीं उत्पन्न करेगा, ऐसा कौन है जो नहीं करेगा? जो न जिसकी कथा में रति नहीं होती है वो मूर्ख है, वो कोविदा नहीं है। प्रभुपाद जी कोविदा का अर्थ देखिए लिखते हैं, कोविदा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। क्यों कथा में रति क्यों करने से लाभ क्या है? बुद्धिमान उसको कहेंगे जिसकी कथा में रुचि हो। कौन ऐसा बुद्धिमान है जो कथा में रुचि नहीं उत्पन्न करेगा? इसका मतलब कौन मूर्ख रहेगा? तो लाभ क्या है? और कब होगी कथा में रुचि? तो यहां लिखा है अनुध्या आसीन युक्ता। अनु का प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं, अनु का एक अर्थ है किसी के पीछे चलना। जैसे हमको कहते हैं रूप अनुगा, हम रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं। और अनु का दूसरा अर्थ है अनुदिनम, मतलब निरंतर, प्रतिदिन, रोज, नेम से। और अध्ययन, अध्ययन करना, ध्यान करना, जो नित्य भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, भगवान के नाम का ध्यान करता है, स्मरण करता है, रूप का स्मरण करता है, लीला का स्मरण करता है। बोला मैं होगा क्या इससे, इसे बुद्धिमान है तो लाभ क्या होगा। आसीन युक्ता, आसीन कहते हैं तलवार को, और युक्ता का मतलब है हाथ में लेकर। कौन सी तलवार हाथ में लेकर और क्या करें। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे हैं, ऐसे भी दुनिया के अंदर मजहब हैं, धर्म हैं, जो एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ में किताब लेकर कहते हैं या तो ये किताब मानो नहीं तो गर्दन काट देंगे। प्रभुपाद जी कहते हम भी तलवार हाथ में लेकर आए हैं, लेकिन ये गर्दन काटने की नहीं है, तो ये क्या काटने की है। तो कहते हैं कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदंती, ये जो जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण गांठ आ गई है, और कैसी गांठ है, निबंधनम, आपस में उलझ गई है। ये गांठ अहंकार की गांठ है, मेरा है, मैं करूंगा, शरीर में आसक्ति है, और इस शरीर तदात्म्य, इसको कहते हैं देह आत्मा बुद्धि, इसके कारण आत्मा और बुद्धि में, बुद्धि के साथ एक हुक के जरिए गांठ लग गई है, और वो है अहंकार का हुक। और यह है कर्म ग्रंथि, कर्म ग्रंथि का मतलब कर्मों के कारण शरीर मिलता है, और शरीर मिलता है तो उसमें जूठा अहंकार, मैं पना और कर्तापन और भोक्तापन हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा। किससे तोड़ना पड़ेगा, तलवार से तोड़ना पड़ेगा। ये 15वें अध्याय में तलवार को कहते हैं असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा, असंगता की तलवार उठाकर। बुद्धिमान वो है जो ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार, क्योंकि ये कहा है अगर ज्ञान ही नहीं है तो मूर्ख है। तो अगर पहले कर्म ग्रंथी, कर्म आश्याम, कर्म की आशाएं, इसके बाद ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, जब तक ये रहेंगी तब तक वासुदेव कथा में रुचि नहीं होगी। लोगों को रुचि होती है कोई अपने पसंद की चीज कोई है उसको प्राप्त करने के लिए। शराबी इस कोरोना के समय में भी लाइन में इतनी भीड़ लगा के खड़े हैं, इतनी मंदिर में भीड़ तो नहीं लगाते हैं, कथा के लिए तो कोई ऐसी भीड़ नहीं लगाती है, लगाते हैं, क्योंकि ये सब ग्रंथ में बंधे, गांठ में, इनके अंदर एक ऐसी गांठ लगी हुई है इन कर्मों की। ये कर्म भी असल में विकर्म है, ये दुष्कर्म है, उनकी गांठ लगी हुई है, और उस गांठ के कारण वो उधर ही जाते हैं, क्योंकि ये बुद्धिमान नहीं है। इन्होंने इन कर्मों की ग्रंथि को नहीं काटा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्तर आने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ये हमारी रति कैसे होगी। तो पहले तो भगवान का ध्यान करेंगे तब रति होगी। तो भगवान के नाम का स्मरण, प्रभुपाद जी कहते इतने सारे, ये प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे हैं ये ग्रंथि है इंद्रियों के भोग में, विशेष रूप से काम भोग की ग्रंथि। प्रभुपाद जी कहते हैं आप अमेरिकन लोग अपने बहुत बड़े धनी पिता का घर छोड़ के आ गए, घर के सब सुख छोड़ के आ गए, ये हिप्पी की तरह रहे हो, लेकिन फिर भी आप लड़के लड़कियां आपस में साथ रहने को नहीं छोड़ते हो, और ये आपके अंदर भोग जा नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि इस संसार में बंधन का कारण है, सेक्रेड है, बहुत बड़ी हथकड़ी है। और ये जन्म जन्मांतर से सब जूनियों में, प्रभुपाद जी कहते मानव जूनी दूसरों से महान इसलिए है कि कुत्ते को भूख लगती है तो किसी के घर में जाके अंदर में घुस के खा लेगा, लेकिन आदमी किसी घर में जाके ऐसे नहीं खाएगा जब तक कोई घर में नहीं बुलाएगा, ऐसे बिल्ली हैं, आप इस कितनी बार भगाओ अगर उसको पीना है तो दूध आके पिएगी। इसका मतलब वो कोई सभ्य नहीं है। ऐसे आकाश में कौआ है तो ऊपर से आगे आपके हाथ से कुछ लेके चला जाएगा। बंदर है वृंदावन में जाओ तो कोई आप फल हाथ में लेके घूम नहीं सकते हो, कहीं से ले जाएगा। लेकिन मानव कम से कम इस तरह तो नहीं करता है। तो इसका मतलब, और फिर गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, और एक दूसरा कोई आपस में नर मादा मिल जाते हैं तो किसी का वो तो दूसरे को कुछ नहीं है, अपना इच्छा पूरी करनी है, लेकिन ऐसे मानव तो नहीं कर सकता है। तो मानव के लिए कुछ नियम है और कुछ मर्यादाएं हैं। अगर वो उसमें रहे तो प्रभुपाद जी कहते आज तो लोग फिर पशु बनने के तरफ आगे निकल चुके हैं, और अच्छे से अच्छे सोफिस्टिकेटेड पशु बन के और चार पहिए वाली गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन पशुओं से ज़्यादा उनकी बुद्धि ऊपर नहीं है। अगर कोविद होते तो इनके अंदर कथा में रति होती, और रति शब्द जो है, रति शब्द है लड़के लड़की को आपस में मिल भौतिक जगत में है, रति कहते हैं लड़के और लड़की का आपस में मिलन, उसको रति कहते हैं। ऐसे कथा में रति हो, बोला कथा में रति उत्पन्न कैसे हो? तो पहले तो ये कर्म की ग्रंथि का छेदन होना चाहिए जो खुल नहीं सकती है। कैसे होना चाहिए? भगवान के निरंतर भक्ति करने से आपके अंदर विवेक उत्पन्न होगा। विवेक की तलवार लेकर, विवेक का अर्थ क्या है? बुद्धि का काम है निर्णय करना, बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, और उसको कहते हैं विवेक। तो विवेक की व्यक्ति जो होगा वो एकदम जिज्ञासा करेगा कि मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है। और ये जब प्रश्न पूछा था सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर ये दिया, अनादिकाल जीव कृष्ण बाहर मुख, अतएव माया दे तहां धन संसार दुख। अनादिकाल से जीव बाहर मुख है, इसलिए माया उसको दुख दे रही है। मैं बड़ा, लोग कहते हैं मैं मंत्री हूँ, लोग कहते हैं मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, लेकिन मैं मूर्ख अपने आप को नहीं जानता हूँ, मैं कौन हूँ? तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखा है कि इस भौतिक जगत में जीव आता है तो बंधन में पड़ जाता है, एक कर्म और उसका फल भोगता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और ये सिलसिला चालू रहता है। और इससे मुक्त होना है तो भगवान को याद करना पड़ेगा, भगवान के दिव्य गुण रूप लीला नाम का स्मरण करना पड़ेगा। और भगवान की लीला दिव्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो हमारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा। तो जिसको लोग कहते हैं संसार के दुख से मुक्त होना है, वो तो भक्ति का बाय प्रोडक्ट है, वो गौण चीज है जो अपने आप मिल जा रही है। भक्ति में कुछ करना, भक्ति करेंगे तो वो अपने आप मिल जाएगी। आप कर्म करोगे तो उसके ऊपर भी, प्रभुपाद ने एक बड़ी अच्छी यहाँ परिभाषा लिखी है, ये आप वैसे सामान्य नहीं सुनते हैं, सुन लीजिए। अगर कोई कर्म में लगा हुआ है, निष्काम कर्म में लगा हुआ है, उसमें भी भक्ति अगर जोड़ोगे तभी उसका फल मिलेगा। तो जब कर्म में भक्ति थोड़ी जुड़ी हुई होती है तब उसका नाम कर्म योग होता है, और ऐसे ज्ञान में जब भक्ति जुड़ जाती है तो उसका नाम ज्ञान योग होता है। और पर तो ये दोनों जो है शुद्ध भक्ति नहीं है, भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, इसके साथ किसी को मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्म को और ज्ञान को तो भक्ति का सहारा चाहिए, तभी फल देते हैं। तो यहाँ ये परिभाषा प्रभुपाद ने बड़ी अद्भुत परिभाषा लिखी है कि कर्म योगी, यहाँ शब्द क्या लिखा है, कर्म ओवर कोटेड विद डिवोशनल सर्विस। इसका मतलब कर्म में भक्ति को उसके ऊपर भक्ति का लेप लगाओगे तभी वो भक्ति योग कहलाएगा, तभी आपको उसका फल मिलेगा। ऐसे कर्म ओवर कोटेड विथ भक्ति, तो इन दोनों को कहते हैं कर्म मिश्रित भक्ति और ज्ञान मिश्रित भक्ति। लेकिन शुद्ध भक्ति इन दोनों में तभी फल मिलता है जब भक्ति मिलेगी तब फल मिलेगा। अकेला कर्म कुछ नहीं, अकेला कर्म सिर्फ दूसरा जन्म दे सकता है बस, और उसमें सुख और दुख दे सकता है। लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता है। भगवान की भक्ति के बगैर कर्म न काम कर नहीं करेगा, न ज्ञान कुछ दे सकता है, दोनों नहीं दे सकते। इसलिए भगवान को क्या चेतना महाप्रभु ने प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है कि भगवान को निरंतर कैसे याद किया जाए, उसके बारे में सुनने से, उसकी पूजा करने से। वृंदावन में गोस्वामी जिनको चेतना महाप्रभु ने अधिकृत करके भेजा था, उन्होंने इस भक्ति के लिए बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, बड़ा परिश्रम करके नियम स्वयं पालन किया और हम सब के लिए लिख के गए हैं, और भागवत जैसे शास्त्र में ये लिखे हुए हैं। तो ये श्लोक में मुख्य बात क्या है कि भगवान के स्मरण की तलवार हाथ में उठाकर कर्म की गांठ को छिन्न भिन्न करके तोड़कर बुद्धिमान वो है जिसकी कथा में रुचि हो। तो कथा के में रुचि करने के लिए कर्म की गांठ तोड़नी है, भगवान का ध्यान करना है, लेकिन कहाँ से आएगा? तब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 16 श्लोक अभी पढ़ने जा रहे हैं। शुश्रुषो शरदधानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवण। कहते बुद्धिमान को भगवान का ध्यान करने के लिए और कर्म की ग्रंथि काटने के लिए और कथा में रति उत्पन्न करने के लिए हमारे श्री श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार रति का मतलब है भाव, भाव भक्ति। और भाव भक्ति तक पहुंचने के लिए पहले श्रद्धा चाहिए, फिर साधु संग चाहिए, दूसरा तीसरा भजन क्रिया चाहिए, गुरु का आश्रय लेके दीक्षा लेके हरे कृष्ण मंत्र जपना शुरू करें और नियम पालन करें, चौथा है अनर्थ निवृत्ति। और ये कर्म ग्रंथ ही है अनर्थ निवृत्ति का, ये अनर्थ निवृत्ति तब होती है जब तीसरा स्तर पार करेंगे, तब ये अनर्थ निवृत्ति होगी। और ये अनर्थ निवृत्ति उस वक्त होगी जब ये पार करेंगे, कौन सा अनर्थ निवृत्ति पार करेंगे, तब ये ग्रंथि टूटेगी और इसके बाद निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है। और यहाँ रुचि लिखा है, पहले रुचि आएगी, फिर आसक्ति होगी और फिर आएगा रति या भाव। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले लिखा है श्रद्धा, शरदधाना आदो श्रद्धा। जब श्रद्धा होगी, प्रभुपाद कहते हैं श्रद्धा का मतलब सावधानी से बहुत ही बड़े ध्यान पूर्वक शुश्रुषो जब श्रवण करता, हरि कथा का जब श्रवण करता सावधानी से श्रद्धा से। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत से लोग रास्ते से जाते हैं लेकिन कुछ ही मंदिर में आते हैं, इसका मतलब उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। और ये श्रद्धा उत्पन्न होना मंदिर में आने के लिए, कथा में बैठने के लिए, इसके लिए कई जन्मों के भक्ति जनक सुकृति चाहिए, एक जन्म की नहीं। अज्ञात सुकृति, कहीं प्रभुपाद जी कहते हैं कहीं कोई कहता है ये हरे कृष्ण वाले देखो कितने अच्छे हैं, भगवान का नाम सुबह सुबह सुनने को मिलता है, अरे इनके वहाँ जाओ प्रसाद वितरण होता है, सबको मिलता है। पहले तो ये शास्त्र पढ़ने के लिए मिलते नहीं थे, हम गुरु के पाश्रम में जाते थे, अपने हाथ से लिख के याद करना पड़ता था। अब तो ये गली गली में भगवद गीता सबको देने का कितना बड़ा जो है परोपकार का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे जिनके मन में भाव, अगर इतना ही कह दिया प्रभुपाद जी ने कहा, तो भी उसका सुकृति अज्ञात सुकृति चालू हो गया। और ये अज्ञात सुकृति कैसे चालू हुआ, भक्तों के संग से, भक्तों को देखा तब हुआ। ये अज्ञात सुकृति इसको खींच के लाएगी मंदिर तक, और इनको भक्त कहीं जाते हुए देखेंगे तो भक्तों को बुलाएंगे, क्योंकि इसकी अज्ञात सुकृति अब जागृत हो गई है, भक्ति जनक अज्ञात सुकृति। ये भागवत के दूसरे श्लोक में लिखा है, जो भागवत का आशीर्वाद है, उसमें लिखा है तत्क्षणात् भगवान अवरुद्धेते हृदय, भगवान उसके हृदय में उसी वक्त बैठ जाएंगे। कब? जैसे वो भागवत कथा सुनने के लिए घर से रवाना होगा, आजकल ये समझो कि अपने मोबाइल के ऊपर कथा सुनने के लिए बैठेगा तो समझ लो भगवान अंदर में एकदम सतर्क होंगे, अरे मेरी कथा सुन रहा है, लेकिन किसकी, किसके हृदय में लिखा है सुकृति भी ही कृति भी ही, जिसकी भक्ति भक्ति जनक सुकृति उदय हुई है, कई जन्मों की सुकृति जब उदय होती है तब श्रद्धा उत्पन्न होती है, और श्रद्धा उत्पन्न होती है तो क्या मिलता है, भक्तों का संग मिलता है। तो लिखा है श्रवण में सावधानी और श्रद्धा हो, किसके लिए तो क्या होगा, तो कथा में रुचि होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे ये होगा, स्यान महत सेवया विप्रा हे ब्राह्मणो, ये संबोधन है सनक आदि ऋषि को, ब्राह्मणो किसी महात्मा के सेवा करने से ही ये श्रद्धा उत्पन्न हुई, मंदिर तक आया, फिर कोई महात्मा कृपा करेगा तब वासुदेव कथा में रुचि होगी। महत सेवया महत पद रजाभिषेकम द्वारम, भगवान के घर का द्वार खोला खोल देता है कौन, महत पद रज अभिषेक, महात्माओं की सेवा, और महात्मा कौन से, बहुपज के महात्मा, ये श्लोक है जिन्होंने राधा रानी का शरण लिया है, जैसे गुरु के आगे श्री लगता है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, ये जो श्री लगाते हैं ना गुरु के सामने, ये श्री मिस्टर की तरह नहीं है, ये श्री है राधा, उसके चरणों का जिसने शरण ले लिया है, इसको भागवत के शब्दों में गीता के शब्दों में कहते हैं महात्मानस्तु पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः, ये महात्माओं ने राधा रानी का शरण लिया है जो देवी प्रकृति है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं वृंदावन में सभी अपने आप को राधा रानी के अनुयायी बना देते हैं, राधे राधे, तो ये जो राधा रानी भक्ति, राधा रानी की स्वरूप शक्ति है, राधा रानी के ही निर्देश में भक्ति हृदय में आती है, और जब वो आती है तो कृष्ण को अपनी ओर आकर्षण कर लेती है, तो इसलिए महत सेवया का मतलब ऐसे महात्माओं का सेवा करना। अब प्रश्न ये उठता है कि महात्माओं की सेवा से, महात्माओं की सेवा किसको कहते हैं, इस श्लोक में लिखा हुआ है महात्माओं की सेवा है श्रद्धा से वासुदेव की कथा सुनना, ये है महात्मा की सेवा। अब देखिए नारद जी छोटा सा बच्चा था, भक्ति वेदांत महात्मा चतुर्मास के लिए आए आके रहे, ये दुर्मल गोप के बेटे के रूप में कन्याकुमज में जन्म लिया था नारद ने, एक गोप के घर में जिसका नाम था दुर्मल गोप, और नारद जी बहुत बड़े एक गंधर्व थे उपभ्रंश नाम के, लेकिन भगवान की महिमा नहीं गाई तो वहाँ से पतन होके एक दासी पुत्र दुर्मल गोप में पैदा हुए, पिताजी का देहांत होगा, माता पालन पोषण करती थी, ब्राह्मणों के घर में माता काम करती थी, वहाँ चार महीने के लिए बरसात के चतुर्मास में कुछ भक्ति वेदांत आ गए। नारद उनकी सेवा में लग गया और नारद कहता सेवा मेरी क्या थी, उन्होंने मेरे को कथा सुनने की अनुमति दे दी और मैं उनकी कथा सुनता था, छोटा बच्चा था, इंद्रियां मेरी चंचल नहीं थी, मैं बोलता भी बहुत कम था, खेल कूद में मेरे को रुचि नहीं थी, मैं उन महात्माओं के बस अगर कोई आज्ञा करते थे तो मैं बच्चा था क्या ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ, लेकिन उनकी कथा सुनने के लिए उन्होंने मुझे बैठने का अधिकार दे दिया, ये मेरे ऊपर कृपा की, और एक दिन उन्होंने प्रसाद पाया और उनकी अनुमति से मैंने उनका उचिष्ट प्रसाद पाया, और जाते समय वो मेरे ऊपर कृपा करके गए और मेरे को भगवान की कथा में आनंद आ गया, रुचि हो गई। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने जाके कितने लाखों लोगों का, प्रभुपाद जी कहते हैं इन किसी को रुचि थी नहीं, हमने रुचि पैदा की है, हमने भक्ति के साधन सिखा के इसके अंदर आज हजारों लोग कृष्ण भावना का पालन कर रहे हैं, हरे कृष्ण का मंत्र जप रहे हैं, तो हमने इनके अंदर रुचि पैदा की। तो इस श्लोक के तात्पर्य में ये लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि भगवान इस धरती के ऊपर जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो संसार के ऊपर दुख का कारण है और हमेशा दूसरों को दुखी करना चाहते हैं, उन लोगों को सुधारने के लिए भगवान भक्त भगवान अपने भक्तों को इस धरती के ऊपर अवतार के रूप में भेजते हैं, कहीं पुत्र के रूप में भेजते हैं, कहीं अवतार के रूप में भेजते हैं, कहीं संदेश वाहक के रूप में भेजते हैं। ये तात्पर्य पढ़ के देखना, वह भगवान अपने अवतार की बात नहीं है, स्वयं भी आते हैं लेकिन भक्त को शक्ति अवेश अवतार का वर्णन है। और इस भाव लिखने, ये प्रभुपाद ने जब लिखा है तब इस कान की अभी स्थापना भी नहीं हुई थी, ये पहला स्कंद भागवत का प्रभुपाद ने वृंदावन में बैठ के लिखा है। लेकिन जो प्रभुपाद ने लिखा है उनके जीवन में अनुभव है। तो ऐसे महात्माओं की कथा सुनने, वो क्या करते हैं, वो आपकी रुचि भगवान की कथा की ओर जगाने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा वो रिस्क उठाते हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे महात्मा भगवान को बहुत प्रिय हैं, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है, इसी के तात्पर्य में होगा, जैसे भगवत गीता में लिखा है 18:69 में कि जो मेरे इस भगवत गीता के सत्संग को संदेश को श्रद्धालुओं को सुनाता है, लेकिन वहाँ प्रभुपाद ने लिखा है भगवान ने श्रद्धालुओं को कहा है लेकिन भक्त तो जोखिम उठा के श्रद्धालुओं को भी सुनाने जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के भाव को जानते हैं, क्यों श्रद्धालु भी भगवान की ही संतान है, उनको भी सुनाने के लिए जोखिम उठाते हैं, रिस्क उठाते हैं, इसलिए वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और ऐसे भक्त क्या करते हैं, ऐसे भक्त हमारे जीवन में पुण्य उदय करते हैं, और पवित्र करते हैं हमारे जीवन को, पुण्य। और फिर तीर्थ कहते हैं पवित्र करने को, तीर्थ पवित्र करते हैं, पुण्य उदय होता है। निषेवनात् का मतलब उनका सेवन करने से, उनको उनकी अगर सेवा की जाए, संत की सेवा हरि नाम ध्याया, साधु संत की सेवा यही है, भगवान का नाम जप लो। तो यहाँ पवित्र कैसे करते हैं, भगवान की कथा में रुचि होने से पहले पवित्र होना पड़ेगा, तीर्थ बनना पड़ेगा। तीर्थ कहते हैं पवित्र को, जो जैसे हम गंगा जाते हैं स्नान करते हैं तो पाप सब धुल जाते हैं, तो ऐसे पुण्य होने के लिए क्या करना है, अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब तक पाप कर्म नाश नहीं हुए, वो पहला वाला श्लोक, कर्म ग्रंथि खत्म नहीं हुई, जनानाम पुण्य, और जब उनके पुण्य का उदय नहीं हुआ, ये दूसरा श्लोक, 15वें श्लोक में ये भगवत गीता का श्लोक है, याद रखना, अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसके पाप नाश हो गए वो है कर्म ग्रंथि खटखट गई, अब पुण्य उदय हो गया। ये पुण्य उदय होता है जब हृदय पवित्र होता है, और हृदय पवित्र होता है चेतो दर्पण मार्जनम, जब चित्रूपी दर्पण का मार्जन होता है, कैसे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं हरि कथा में, वासुदेव कथा में, भागवत में, भगवत गीता में, चेतना चरितमृत में रुचि उत्पन्न करनी है तो उसको होती है जो हरे कृष्ण मंत्र सावधानी से जपता है। हरे कृष्ण मंत्र सावधानी से जपता है, ध्यान पूर्वक जपता है तो हृदय साफ हो जाता है, तो इन सत शास्त्रों में रुचि होती है। लेकिन ये जपेगा कैसे, भजन क्रिया में जब जाएगा तब, इसमें साधु संघ तो मिल गया, श्रद्धा मिल गई, श्रद्धा आई, साधु संघ आया, अब भजन क्रिया का मतलब दीक्षा लेना, गुरु के चरणों का आश्रय लेना, और जैसे लेगा अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगी, पुण्य होना, पवित्र होना शुरू हो जाएगा, पवित्र पूरा हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगी कि ये भक्ति का रास्ता ही मेरा कल्याण का रास्ता है, तब रुचि उत्पन्न होगी। तो साधुओं का संग करना इसका मतलब, और साधुओं के संग का मतलब है हरि कथा, और हरि कथा सुनने से, हरि कथा जितनी अधिक सुनेंगे उतनी उस वो हमारी एक स्वभाव बनता जाएगा। उसके बगैर ये कथा ऐसा औषधि और अमृत है जिसको पीने के बगैर फिर हम जी नहीं सकते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधाप गाह, जहाँ भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथा की सरिता या नदी नहीं बहती है, तो फिर वहाँ चाहे स्वर्ग हो हमको नहीं चाहिए। जहाँ हरि भक्त उस कथा में करने वाले और सुनने वाले संग न मिले, ऐसा हरिनाम संकीर्तन जैसा और जन्माष्टमी जैसा और गौर पूर्णिमा और रामनामी जैसा जहाँ उत्सव नहीं मनाया जाता है, तो स्वर्ग भी योग तो हमको नहीं चाहिए। ये है, यह है स्वर्ग में बैठे हुए देवता इस भारतवर्ष में और विशेष रूप से कली काल में जन्म लेके ने के लिए सतयुग के और त्रेता के भक्त भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि केवल जवान हिलाने से, होंठ हिलाने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जपने से भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है। तो ये एक महत सेवया का मतलब साधु संग, लेकिन भजन क्रिया, वो महात्मा गुरुदेव है जिसका शरण लेके, और फिर प्रभुपाद प्रवचन में कहते हैं, तब तो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं यश प्रसाद है भगवत प्रसाद, ऐसे महात्मा को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, भगवान को भक्त को प्रसन्न करना बहुत आसान है। प्रभुपाद जी कहते हैं राजा को प्रसन्न करना मुश्किल है, क्योंकि सारे राज का वही तो मालिक है, क्या दोगे उसको? लेकिन उसके बच्चे को छोटा सा फूल दे दो, के खिलौना दे दो, के टॉफी दे दो, तो राजा खुश हो जाएगा। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आपको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं प्रभुपाद जी, हाउ कैन आई प्लीज यू? प्रभुपाद जी थोड़ा शांत रह के, जब आपको कृष्ण, आपके हृदय में कृष्ण का प्रेम जागृत हो जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो साधु की प्रसन्नता है। अब ये एक शब्द कह के इस कथा को यहाँ विराम देते हैं, आपके लिए प्रश्न उत्तर के लिए कुछ समय आपको देते हैं। आप भक्ति जनरेट नहीं की जा सकती, भक्ति कहीं किसी साधन से जनरेट नहीं होगी, भक्ति भक्ति से ही पैदा होगी। भक्ति इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए डिवोटी टू द डिवोटी। जैसे लकड़ी है आपके पास जलती हुई, तो दूसरी लकड़ी जो नहीं जलती है, उस लकड़ी को उसके साथ साथ उसको लगाओगे तब वो जलेगी, ये ट्रांसमिशन हो गया। तो भक्ति भक्ति से ही उत्पन्न होती है, इट कैन नॉट बी जनरेटेड, कैन बी ओनली ट्रांसमिटेड। इसका मतलब ये प्रसंग पूरा चल रहा है भागवत धर्म, जिसमें भक्ति सबसे ज्यादा प्रबल साधन है, और ये भक्ति केवल भक्त के हृदय से हमारे हृदय में आएगी, और ये भक्ति गुरुदेव अपने हृदय में जो उसने अपने गुरुदेवों से प्राप्त की है वो शिष्य के हृदय में स्थापित करते हैं और साधन सिखाते हैं, तब ये भक्ति का शुभारंभ होता है। पहले श्रद्धा होना, कई जन्मों के भक्तों के संग से सुकृति हुई, तब उनको भक्तों का संग मिला, उस संग में उसको कथा सुनने का और कीर्तन करने का मौका मिला, तब उसने निश्चय कर लिया कि मैं दीक्षा ले लूँगा, और जैसे ही उसने गुरु का आश्रय लेने का संकल्प कर लिया और ऐसे महात्मा का शरण ले लिया जो भगवान का बहुत प्रिय है, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, धरती के ऊपर कृष्ण का बहुत प्रिय है, तब समझ लो कि उसका वो भक्ति वहां से आपके, इसलिए भक्ति लता बीज ब्रह्मांड भ्रमित कोई भागीवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कई लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा होती है। कैसे कृपा होती है? किसी भक्त की सेवा की थी इसलिए सुकृति हो गई, तो श्रद्धा पैदा हुई, जहाँ कीर्तन हो रहा है, जहाँ क्या कथा हो रही है, वहाँ जाने लगा, तब गुरुदी ने गुरु जी कृपा किया उसके ऊपर और भक्ति के लता का बीज दिया। इसका मतलब भक्ति के नेम दिए, और उन नेमों में श्रवण पहला नियम है, और श्रवण में हरि कथा में रति पैदा करनी है। और फिर कीर्तन है, भगवान के नाम का जपना है। तो ये असल में भगवान का नाम भक्ति का बीज नहीं है, हरे कृष्णा तो साक्षात भगवान है, ये तो राधा कृष्ण का जुगल रूप है। लेकिन भक्ति के नेम जो है, श्रद्धा बिंदु गुरु दिया, गुरु गुरु ने क्या दिया, श्रद्धा बिंदु गुरुदेव दिया, श्रद्धा का एक कणा दिया, ये भक्ति का बीज है, ये भक्ति के नेम है। रोज भागवत का श्रवण करना, ये भक्ति के नेम जो है, ये भक्ति का बीज है। और ये जब गुरुदेव देता है तब भक्ति का बीज अंकुरित होके भक्ति की लता अब आगे बढ़ के और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को जब वो लपट जाती है तो कृष्ण प्रेम के आनंद इस धरती के ऊपर बैठे हुए हम अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ति का जन्म भक्ति से होता है, भक्ति की उत्पत्ति भक्ति से होगी और भक्ति किसी भगत भक्त से ही मिलेगी। भक्ति जन्म हैते भक्त संगे, भक्ति का जन्म भक्त के संग में होगा। तो इसलिए भक्तों का संग सबसे महत्वपूर्ण है, वो भक्ति की लता की सुरक्षा के लिए बाढ़ का काम करता है। जैसे कांटों की बाढ़ कोमल पौधे को बचा के रखती है, ऐसे भक्ति की लता की रक्षा के लिए भक्तों का संग चाहिए। और भक्तों के संग में हरि कथा में श्रद्धा, गुरुदेव का सेवा करने से, वैष्णव की सेवा करने से उत्पन्न होगी कथा में रुचि, और फिर कथा में रुचि होगी तो आगे क्या होगा ये हम अगले रविवार को 10 बजे फिर इसके आगे वाले श्लोक पढ़ेंगे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं ये, श्रृंखला श्लोकों की बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ कथा को विराम देते हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं कुछ जिज्ञासा हैं तो अपन 10 मिनट तक प्रश्न उत्तर आपके हैं तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। तो आप हमने आज हमने 2 श्लोक पढ़े, 15वें श्लोक, अपने हाथ में तलवार उठाओ, कौन सी विवेक की ज्ञान की तलवार उठाओ, और तलवार किसी को मारने के लिए नहीं मत उठाओ, अपने हृदय में कर्म की ग्रंथि को काटने के लिए उठाओ। बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोला उसके लिए बुद्धिमान बन के भगवान के नाम गुण रूप की ध्यान करना पड़ेगा। बोला कहाँ से मिलेगा, उसमें हमारे को ट्रेस्ट कैसे आए, उसमें हमारे को रति कैसे उत्पन्न हो। बोला श्रद्धा से हरि कथा सुनने के लिए महात्माओं का संग कर लो, महात्माओं के संग करोगे तो ये मिल जाएगा। हरे कृष्णा, कैसे प्रभु जी, सब ठीक है? धन्यवाद। हरे कृष्णा, तो 15 और 16 श्लोक दोनों पढ़ लेना आप, और अगले रविवार को 17-18 जो भी श्लोक होगा उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हाँ हाँ, क्या देव कृष्ण, क्या समाचार है? हरि बोल।
आपको हमेशा
कृष्ण कृपा है, चल रहा है, दामोदर देश की कथाएं चलती रहती हैं।
थैंक यू प्रभु। हरि बोल। आजकल मैं भी अटेंड कर रहा हूँ एनबीएस।
हाँ
लिफ्ट फार्मर सेविया।
हाँ
सुबह 8:30 से 10 बजे लिफ्ट, ये कोरोना ने हमको फायदा करा दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
आप भी आइए उधर एक बार, मैं भी एक महीने शुरू किया है।
बहुत अच्छा।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस प्रभु,
स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
हरि बोल। धन्यवाद प्रभु।
सब
भक्तवृंद की जय।